Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Pushpadan's Kaivalya Upanishad in Hindi, presented by Swami Acharya Swami Sri Bhagavatanand Ji. Thank you. Om Namah Shivaya.
वालादिष्वपि जागृदादिषु तथा सर्वासुवस्थास्वपि व्यावृत्ता स्वनिवर्तमानमामी त्यन्तस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजताम् यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमेदं श्रीदक्षिणामूर्तये मधुरमधुरमेतन्मङ्गलं मङ्गलानां सकलनिगमवल्ली चित्फलं सत्स्वरूपम् सकृदपि परिगीतं हेलया श्रद्धया वा भृगुवरनरमात्रं तारयेत् कृष्णनाम नमो महद्भ्यः ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः परम प्रेमास्पद परमात्मस्वरूप कैवल्योपनिषद आप लोग श्रवण कर रहे हैं। कैवल्य माने होता है मोक्ष और उपनिषद माने ज्ञान का भंडार, जिसके पास बैठने से, जिसका मनन करने से, जिनका श्रवण करने से, अनुशीलन करने से हमारी जन्म जन्म की भूल, जन्म जन्म की अविद्या, जिसके कारण जन्म मरण होता है वो मिट जाए, उसको कहते उपनिषद। और इसके दो खंड हैं, प्रथम और दूसरी 24 मंत्र हैं। तो ये उपनिषद बड़ी विचित्र है, बड़ी सरल सुगम और साधकों के लिए है। ये जो जिज्ञासु साधक हैं, जो ध्यान में भी इसमें विषय आएगा और बहुत सरल ढंग से बताया गया। और विशेषता इसकी ये बात है कि जो हमारी प्राचीन ऋषि परंपरा है गुरु और शिष्य की, वो इसमें बताई गई। शिष्य ने पूछा, गुरुजी ने उत्तर दिया। ये हमारी प्राचीन परंपरा रही, अपने से नहीं बोलते थे लोग पहले, जो शिष्य ने पूछा तो बोल दिया, बता दिया, उसी के अनुसार इसकी परंपरा है। और इसका नाम है मोक्ष। कैवल्य माने मोक्ष, केवल एक एक तत्व है। तो वो पुरुषार्थ होते हैं चार। देखो कोई भी व्यक्ति हो, जरायुज अंडज स्वेदज उद्भिज चारों प्रकार की योनियों में अपने आनंद की और जो मिला हुआ है उसकी सुरक्षा, माने सुख और सुरक्षा सबको चाहिए। ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ है जगत में जो सुख और सुरक्षा न चाहे। अपने साथी सामान को पाना और बचाना, ये हरेक का लक्ष्य है। जो नहीं मिला सो मिल जाए, पाए दें, और जो मिला है सो बचा रहे। तो साथी सामान को पाने और बचाने के लिए प्रयत्न चलता रहता है, ये स्वाभाविक एक रुचि है हरेक की, केवल मनुष्य की नहीं, ये तो हरेक की है, अपने साथी सामान को पाना बचाना। जबकि उसको मालूम है न रह सकोगे न रख सकोगे, ये मालूम है, क्योंकि वो सामान बचा के करें क्या, कि जब रख ही नहीं पाएंगे न हम नहीं रहेंगे तब क्या करेंगे बचा के। लेकिन फिर भी व्यक्ति जुटा उसी में है, कुछ पा लें कुछ बचा लें। तो ये मनुष्य की ये विशेषता है कि मनुष्य के लिए ये चार पुरुषार्थ बताए गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। क्यों बोले, यद्यपि सुख सुरक्षा इसको भी चाहिए, लेकिन मनुष्य में कर्म स्वतंत्र है, इसीलिए उसको विधि निषेध बताया गया, ये करो ये न करो, यहां जाओ यहां न जाओ, ये खाओ ये न खाओ, ये मनुष्य को ही बताया गया, गाय को नहीं बताया जाएगा न बकरी को बताया जाएगा। मनुष्य की ये विशेषता है कि उसके लिए ही विधि निषेध बनाया गया। यदि कर्म स्वतंत्र न होता, माने वो अगर कर्म में स्वतंत्र न होता तो विधि निषेध क्यों किया जाता? वेद ने बताया कि ये करो ये न करो, यहां जाओ यहां न जाओ। तो सुख सुरक्षा चाहिए सबको, लेकिन मनुष्य को केवल कर्म स्वतंत्र है, वो चाहे तो अपने अज्ञान को मिटा सकता है इस उपनिषद ब्रह्म विद्या ज्ञान से, यदि चाहे। चाहने की बात है भाई। अब ये चार पुरुषार्थ मनुष्य के लिए जो बनाए गए, जैसे मान लीजिए धर्म है, धर्म करने से स्वर्ग मिलता है, तो स्वर्ग है ऐसे समझो जैसे होटल, जितने तुम्हारे पुण्य हैं उतने दिन वहां रहेगा, बाद में क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। वहां से जैसे पका हुआ आम टपक पड़ता है ना, इसीलिए उसका नाम टपका रखा गया, ऐसे टपक पड़ता। स्वर्ग सुख है जब बहुत बड़ा है, बड़े भोग हैं, लेकिन वो क्या जरूरत, जब तक पुण्य है तब तक, ये धर्म है। अब अर्थ आया, अर्थ का अर्थ ही होता है इयर्थिति अर्था, जो चलता रहा है। ज्योतिषी लोग कहते हैं ना, तुम्हारे हाथ में एक ऐसी रेखा है, पैसा तो बहुत आएगा लेकिन टिकेगा नहीं। बोले हां महाराज बिल्कुल सही बात आपने कही, ये लो 100 रुपया। हाँ ये बात है ना सही। अरे बाबा उसकी टिकने की आदत अगर होती तो जहां छापा खाना छपा है वहीं न टिक जाता, तो तुम्हारे तक आता ही क्यों? उसकी तो आदत ही है ईयर थी ईयर था, जो चलता रहा है। आज अर्थ योग है, इसका मतलब ये नहीं कि हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो बेकार है सब, ऐसा नहीं है। प्रकाश पूर्वक विकास की योजना है उपनिषद की, प्रकाश पूर्वक विकास, विकास तो होए लेकिन विकास दिव्यता की ओर रहा है, भव्यता की ओर न रहा है। दिव्यता और भव्यता में अंतर है। भव्यता जैसे आजकल डेकोरेशन किया जाता है, तो जैसे प्रकाश पूर्वक विकास इसलिए बताया कि हम पदार्थ में देखें सुंदर है, लेकिन उसकी सुंदरता नहीं है, सुंदरता सत्यम शिवम सुंदरम है, ये प्रकाश पूर्वक विकास हो गया। फूल में मूल देखो, फूल में मूल देखना प्रकाश पूर्वक विकास है, और फूल की सुंदरता देख करके मुग्ध हो गए, ये विकास पूर्वक प्रकाश है। ये तो आप कई बार सुन चुके, टीवी में आकारों में आकर्षित होने के कारण लाइट भूल जाते। तो अर्थ है, अर्थ युग है, और धनम अर्जयेत नित्यम, वेद में लिखा है कि धन अर्जित करना चाहिए, लेकिन किस लिए? धनम अर्जयेत नित्यम धर्माय, धर्म के लिए करना चाहिए। धर्म पूर्वक कमाया हुआ धन धर्म में लगाओ तो उससे आवश्यकता की पूर्ति होती है। इच्छा की पूर्ति नहीं हो सकती, आवश्यकता की पूर्ति होती है। ये मजे की बात है कि इच्छा की पूर्ति तो कभी आज तक किसी की हुई नहीं है, न होगी, और आवश्यकता की पूर्ति रुकी नहीं है आज तक, रुकेगी रुकेगी नहीं, हो ही रही है। आवश्यकता की पूर्ति होती है। तो कितना भी पैसा हो, कितना भी धन हो, कितने भी डनलप के गद्दा और नारायण बढ़िया एसी खरीद ली जाए, सब पैसे से हो जाएगा, लेकिन नींद, नींद तो नहीं खरीदी जा सकती। अच्छा आप बंदूक खरीद लेंगे पैसे से, उत्साह, मारने का उत्साह नहीं है तो फिर आप जरा इस पर विचार करना। अर्थ उपयोगी है, मैं भी मानता हूं, लेकिन उपयोगी है प्रकाश पूर्वक विकास का। अगर ये ज्ञान नहीं है, आप सोचिए, हमने देखा बहुत बढ़िया 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 मिठाई पड़ी है, लेकिन अब वो बेचारे की जैसे बिल्ली मलाईदार दूध के लिए लपकती है, इसी तरह से जीभ लपक रही है, उनको डायबिटीज है, खा ही नहीं सकते। तो यद्यपि पुरुषार्थों में सर्वश्रेष्ठ काम माना गया है कि कामनाओं की पूर्ति हो, लेकिन जरा विचार करो थोड़ा इंद्रियों पर, वो तो बेचारी असमर्थ हैं, बूढ़े हो गए, पैर चला नहीं जाता, आंखें देखती नहीं, कान सुनता नहीं, अब उनके लिए तो सब बेकार है। चाहे जितने विषय हो, चाहे जितनी इंद्रियों की लौल्य हो, लेकिन सब व्यर्थ है उनके लिए, तो बेकार है। तो इसका मतलब ये हुआ कि धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों चीजों की सर्वोपरि बढ़कर के है मोक्ष, छुटना, जेल से छुट जाए। जेल में एक दिन राजा गए देखने, बोले आज हमारी जन्म तिथि है, जो जो मांगेगा सो देंगे। किसी ने कपड़ा की कह दिया, किसी ने भोजन की कह दिया। एक सज्जन बड़े समझदार थे, वो प्रेमपुरी में रोज आते रहे होंगे सत्संग, तो उन्होंने कहा कि राजन आप जो चाहे सो दे। हाँ, बोले हमें जेल से ही छोड़ दो, निर्मुक्त कर दिया। तो बात यह है कि आप क्या चाहते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हो कि आवश्यकता की पूर्ति? अगर आवश्यकता की पूर्ति चाहते तो हो ही रही है, और अगर जेल से छुटना चाहते हो तो कैवल्य उपनिषद, तो ये मोक्ष का रास्ता है। तो आपने ये देखा कि यद्यपि सुख सुरक्षा सबको चाहिए, मनुष्य को भी चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन मनुष्य में कर्म स्वातंत्र है, कर्मयोनि है और सब भोग योनि है, इसीलिए इसको विधि निषेध बताया गया। अच्छा, अब आनंद रूप आपने सुना कि आनंद सबको चाहिए। महाकाव्यों में जैसे राम जी रो रहे हैं, करुण रस है, भवभूति ने तो लिख ही दिया एको रसक करुण यो निमित्त भेदात, लेकिन वो जो रोना है उसको भी सुन करके आपको आनंद ही आता है। अरे वो काव्य में तो सब रस चाहिए, शंकर जी की बरात भी है, राम जी का विवाह भी है, और परशुराम जी का क्रोध भी है, वो तो सब है, उसमें सर्व रस चाहिए, श्रृंगार हास कर्ण रौद्रवीर भयानक सब चाहिए। तो इसलिए इस बात पर ध्यान रखो कि उपनिषद ब्रह्म विद्या वो विद्या है जो हमारे जन्म जन्म के अज्ञान को निवृत्त करता। एक महल बना था, उस महल के किनारे दो शेर बनाए गए थे, बहुत बढ़िया कारीगर ने बनाए, लेकिन रात में जैसे ही चंद्रमा उदय हो वैसे वो शेर नीचे आ जाए। तो बड़ा घबराया घर का मालिक, झट दरवाजा बंद कर दिया, तो शेर दो खड़े, चंद्रमा का उदय जैसे ही होता है तैसे ही नीचे आ जाते। अब पंडित जी से पूछा तो उनका, भाई हवन कराओ, हवन करने से ये शेर भाग जाएंगे। हवन भी कराया, जब भी किया, सब कुछ किया, लेकिन जैसे ही चंद्रमा उदय हो रात में तैसे वो झट शेर नीचे आ जा। एक सज्जन बड़े समझदार थे, उन्होंने कहा कि अच्छा हम शेरों को मारेंगे, आज शेर मार दिए। अच्छा वाह, तुम दरवाजा खोलो। रात में आए और लालटेन गैस बत्ती जगाई, बोले आगे आगे हम चलते हैं, पीछे पीछे तुम चले आ, शेरों का पता नहीं। वो तो चंद्रमा रात के प्रतिबिंब आते थे, जैसे चंद्रमा उदय हो वैसे शेर जो कारीगर ने बनाए तो उसका प्रतिबिंब आ जाता था। ऐसे ये खेल है, धोखे में लालटेन प्रकाश चाहिए, वो प्रकाश ब्रह्म विद्या से मिलता है। उस प्रकाश के लिए अब वो कितने दिन का अंधेरा हो, वर्षों का अंधेरा एक क्षण में निवृत्त हो जाता है। कि इतने वर्षों का अंधेरा है तो इतने वर्ष का प्रकाश भी चाहिए, सो नहीं। इसी प्रकार से हमारा जो अज्ञान है, न जाने कब से है, जन्म मरण कर रहे हैं, लेकिन एक चर्मावृत्ति की एक झलक लगी, बस अविद्या नष्ट हो गई। इसी को कैवल्य उपनिषद, ये मोक्ष का मार्ग है। अब आपने सुना कि अथर्ववेद किए और दो खंडों में विभाजित, बड़ी सरल सुगम है। तो पहले इसमें शांति पाठ है, आप लोग रोज शांति पाठ करते हो, इस पर भी थोड़ा विचार कर लो। असल में बाही जो वातावरण है वो हमारा वातावरण दूषित है। जैसे वातावरण होता है वैसे ही प्रभाव भी पड़ता है। तो बाही वातावरण को शुद्ध करने के लिए ये शांति पाठ होता है। जिस विद्या को आप पढ़ने जा रहे हो उसके लिए पहले तो ये मानसिक, जो जिसको आजकल टेंशन कहते हैं, टेंशन माने द सूरज की गर्मी, टेन और सन, द सूरज की गर्मी है। तो ये टेंशन क्यों होता है, तो इसलिए मानसिक और आध्यात्मिक, आध्यात्मिक आदि भौतिक तीनों प्रकार के वातावरण शांत चाहिए। और ये तो आपको मानना ही पड़ेगा कि बाहरी वातावरण हमारा बहुत दूषित हो चुका है। वो तो आप यहां अंदर कमरे में बैठे हो तो आप इस समय सत्वगुण में उपस्थित हैं। बाहर निकलो और जहां वो प्रचार प्रसार के चित्र देखो और मोटर और कार ये सब देखो तो आपको लगेगा कितना रजोगुण है, और यहां लगता है कि रजोगुण तमोगुण है ही नहीं, सब सत्वगुण है। इतनी दूर दूर से आप लोग इतने जल्दी आ जाते हो तो हम तो आपके बहुत बहुत आभारी कृतज्ञ हैं। क्यों बोले, भगवान की दया है, भगवान की कृपा है, ये उपनिषद सुनने के लिए आ तो गए, इतना कौन कम है, मुझको इतना ही क्या कम है, बहुत बड़ी बात। क्यों, अगर मन में जिज्ञासा न होती, जानने की इच्छा न होती तो आना बड़ा मुश्किल था। तो इसलिए बाहरी वातावरण को शुद्ध करने के लिए बहुत आवश्यक है, पहली बात तो ये ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी बात है, हम वैदिक परंपरा हमेशा ये आई है कि हम अपना कल्याण नहीं चाहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो सब में हम भी तो आ गए, जब सब सुखी रहेंगे तो मैं भी उसी में आ गया। ये देखिए उदात्त भावना है, सब सुखी रहें। एक ने एक देवता प्रसन्न किया और बोले कि प्रसन्न है, वरदान मांग लो। कहा कि क्या वरदान मांगे, जो हम मांगे वो पड़ोसी के दो हो जाएं। अच्छा, सो कैसा, बोले जैसे एक आंख हम पाए फूट जाए तो उसकी दोनों फूट जाए, एक कान बहरा हो जाए तो उसके दोनों कान बहरा हो जाए। देवता ने कहा बड़ा विचित्र वरदान है, लेकिन खर्चा दिया। तो उसने झट देवता से कहा एक कुआ हमारे घर खुद जाए, झट दो खुद गए उसके दरवाजे। तो उसने कहा कि अरे ये कैसे दो खुद गए, तो वो तो सतर्क रहा, अब ये दरवाजे जैसे निकले तैसे उसी में गिर पड़े। बोले अरे क्या बता मैं, ये तो गलत मांग लिया। तो ये हमारी उदात्त भावना है कि हमेशा हम पड़ोसी का आनंद चाहते हैं, वक्ता और श्रोता दोनों आनंद में रहें। आनंद जियो और जीने दो, ज्ञानार्जन करो और करने दो, आनंद में रहो और रहने दो। तुम ही अकेले सत्ता ज्ञान और आनंद की उपलब्धि करना चाहते हो, ऐसी बात नहीं, सब सा है। तो सर्वे भवन्तु सुखना की भावना है। शास्त्र कहता दुर्जना सज्जनो भूयात्, दुर्जन दुर्जन मरे ना, दुर्जन सज्जन बन जाए। सज्जना शांति मापने आत और सज्जन शांत हो जाए। बोले तो इससे क्या फायदा तुम्हें होगा? शांतो मुच्चेत बंधेव्या, शांत जो होगा वो बंधन से मुक्त हो जाएगा। और मुक्त शान्यान विमोचेत, और जो मुक्त होगा तो दूसरों को मुक्त करेगा, ये लाभ होगा। तो इसलिए ये शांति पाठ जरूरी होता है। और क्या सुंदर शांति पाठ है, अब आप लोग रोज करते ही हो। इसमें लगन तीन दो प्रकार की साधना बताई गई, एक अंतरंग एक बहिरंग। तर्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ये तीन अंतरंग है बहिरंग है। और श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया, ये अंतरंग है। यदि जीवन में श्रद्धा नहीं होगी तो अभी गड़बड़, क्योंकि ज्ञान नहीं मिलेगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और तत्परता होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया भाई, इतनी दूर दूर से चल करके आप लोग आ गए, अगर इच्छा न होती तो कैसे आते? तत्परता है। तो तत्परता हो, दृढ़ विश्वास हो, लगन हो, सूझबूझ हो, कोई भी काम असफल नहीं हो सकता। इतनी चीजें करो तो श्रद्धा, तत्परता और इंद्रिय संयमी, ये तीन चीजें अंतरंग साधन है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया, ये अंतरंग साधन है। और बहिरंग साधन क्या बताए? तद्विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तीन चीजें बहिरंग है और तीन चीजें अंतरंग है। तो ये अंतरंग और बहिरंग साधन करने से शांत वातावरण हो जाता है, एटमोस्फियर जिसको कहते हैं, वातावरण शांत हो गया। एक सुवरचल ऋषि थे, उन्होंने एक कन्या पाली थी सुवरचला, बहुत बड़ा गुरुकुल छात्रावास था। वो जब बेटी बड़ी हुई तो उन्होंने कहा भाई तुम लोगों में कोई इसका वर्ण कर लो। तो ब्रह्मचारी लोग बोले कि ये तो हमारे साथ पढ़ी है, तो हमारी बहन की तरह हो गई, दूसरे गुरुकुलों में आप खबर करें। दूसरे गुरुकुल के बड़े बड़े विद्यार्थी आए सब, और वो बहुत विदुषी थी, शास्त्रार्थ सब रट घोंट के आए कि पंक्ति कोई पूछी जाएगी। बड़ी सुंदरी बेटी थी, और वो खड़ी हुई जयमाला लेकर के, और उसने कहा गुरुजी ने कि बेटी कोई तुम्हारी शर्त हो? बोले हाँ शर्त है हमारी, अंधा बहरा लंगड़ा तीन को हम वरण करेंगे। अरे अब तो ब्रह्मचारी बड़े बड़े सुंदर और काजल लगाए के और स्नो पाउडर पोत के आए थे बेचारे, सब फीके पड़ गए नीचे को गर्दन कर ली गिर। अंधा लंगड़ा बहरा, इतनी सुंदरी कन्या और ये अंधे को लंगड़े को बहरे को चाह रही, सब चुप। तो जनक जी की तरह गुरु जी बड़े पछताए, क्या बताएं, तो हमने अच्छा पूछ दिया, न पूछते तो ठीक था। एक ब्रह्मचारी बड़ा सुंदर था, जब वो खड़ा हुआ तो सबने कहा बैठो बैठो तुम, न अंधे हो न लंगड़े न बहरे। बोले भाई देखो हमें पास से जाने तो दो, दर्शन तो करें, कितनी सुंदरता है। तो पास गया और कहा कि हम में तीनों हैं। वो कहा कैसे? भले हमारे गुरुजी ने सबसे पहले ये मंत्र पढ़ाया था, भद्रम करणे भी श्रुणयाम, तो हम कल्याण ही सुनते हैं, कल्याण ही देखते हैं, और हम सबके हित में रहते हैं, और अंग भी सुगठित सुदृढ़ है। तो ये मंत्र का अर्थ है, आप पूछना चाहती हो सो हमने बता दिया। बस उसने जयमाला पहना दी और फूलों की वर्षा होने लगी। तो आप देखिए, आप विचार करिए, वो आपने सुना होगा कि वो तीन बंदर हित बोलो हित सुनो हित देखो। उसने कहा कि हम कभी किसी गलत काम के लिए जाते हैं तो हम लंगड़े हो जाते हैं,